नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 30। अथाशिद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जगृहस्तां वै हरे रनुमतेन ते। अथो दधिर्मथ्यमानात् काश्यपैरमृतार्थिभिः उदतिष्ठन् महाराज पुरुषः परमाद्भुतः। अथ अब आसीद उत्पन्न हुई वारुणी देवी वरुण देवता के द्वारा प्रोडक्ट की उत्पन्न की गई मदिरा। देवी परम सुंदरी या स्वादिष्ट, कन्या कन्या के रूप में थी, कमल लोचना उसकी आंखें परम सुंदर थी कमल के समान, असुराहा असुर गण, जगृह उसको ले लिए, ताम उसको, वही निश्चय हरे है भगवान अजित के अनुमतेन अनुमति से, ते वे दैत्य जो सब कुछ लेना चाहते थे। तो श्री लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया तो भगवान ने श्रीहरि के वक्षस्थल पर रहकर वे अपने भक्तों को करुण दृष्टि से देख करके समृद्ध कर दी। और केवल उसी समय नहीं, आज भी और अनंत अनंत काल तक आगे भी कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने आएगा, भगवान को प्रणाम करेगा तो श्री जी लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर रह करके उस भक्त पर दृष्टिपात करती हैं, उसका परम मंगल होता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने समस्त प्रजा को, लोकपालों को, लोगों को, सबको समृद्ध किया। परंतु इसके साथ ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो असुर थे वे भगवान से विमुख रहते हैं, भगवान के सामने नहीं आते हैं बल्कि भगवान की तरफ से पीठ करके दूर भागते हैं। तो वे सब निःसत्व, लोलुप, निरुद्योग्य निरुद्योग्य और गतत्रप हो गए, चार दोष बता रहे हैं। वे सब धैर्यहीन हो गए और लोलुप, स्त्री धन आदि में बहुत आसक्त रहते हैं, लोलुप, और कोई उद्योग काम धंधा नहीं करते हैं, चोरी हिंसा आदि इन्हीं कामों में रहते हैं, और निर्लज गतत्रपा। तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अथ वारुणी देवी आसीत। वारुणी देवी देवता में श्रेष्ठ वरुण जी के यहां बनाई हुई मदिरा, लेकिन यह एक कन्या के रूप में प्रकट हुई। कन्या के रूप में प्रकट हुई, बहुत सुंदरी। तो दैत्य लोग उसको लेना चाहते थे, तो भगवान ने संकेत किया, हाँ हाँ ठीक है ठीक, उन्होंने अनुमति दिया, ठीक है ले लीजिए। तो असुरों ने उसको ग्रहण कर लिया। अब इसके बाद फिर मंथन चालू हुआ। अथो दधेर मथ्यमा नाथ काश्यपैर अमृतार्थी भी है। देवतागण अमृत अर्थी थे, बीच बीच में अनेक रत्न मिल रहे थे, लेकिन देवताओं का मुख्य ध्येय था अमृत प्राप्त करना, इसलिए उनको अमृतार्थी कहा गया। अमृतार्थी अमृत के इच्छुक देवगण फिर चालू किए मंथन। अथ उदधे है मथ्यमाना, जब उदधे को मथा जा रहा था, किसके द्वारा? काश्यप आई, कश्यप के संतानों द्वारा। कश्यप के दोनों संतान हैं, दैत्य और देवता। अमृत प्राप्ति के लोग मथ रहे थे, मथते मथते तो अकस्मात हे महाराज परीक्षित, एक अद्भुत पुरुष समुद्र के लहरों से निकले, तो चलते हुए आए। और आश्चर्य की बात है कि समुद्र से प्रकट होते थे, लेकिन वस्त्र आदि नहीं भींगते थे। बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए, श्रृंगार किए हुए, एक अद्भुत पुरुष, ये भगवान के अवतार। इस समुद्र मंथन की लीला में भगवान के चार चार अवतार हैं। अजित भगवान जो स्वयं मथ रहे हैं, और भगवान कच्छप देव, और ये हैं भगवान धन्वंतरी, और इसके बाद श्री मोहिनी अवतार। चार अवतार एक समय की लीला में। मथा जा रहा था तो भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उदतिष्ठन महाराज पुरुष परम अद्भुत, परम अद्भुत, आश्चर्यजनक, परम सुंदर, परम तेजस्वी श्री भगवान प्रकट हुए। दीर्घ पीवर दो दंड, दो भुजा को कहते हैं दंड, दोनों भुज दंड, दीर्घ पीवर दो दंड, दोनों भुजाएं दीर्घ दीर्घ थी, लंबी लंबी अजान लंबी भुजाओं, और पीवर मोटी मोटी भुजाएं, और दुबली पतली भुजाएं नहीं थी, मोटी और लंबी भुजाएं। कंबु ग्रीवो रूढ़े क्षण, और गला ऐसा था जो शंख के आकार का था, जिसमें तीन रेखा थी। कंबु ग्रीवो अरूढ़े क्षण श्यामल, और वह पुरुष सांवला था। भगवान धन्वंतरी सांवले हैं, श्यामल और तरुण बिल्कुल युवक, श्यामल और तरुण, स्रग्वी फूल की माला पहने थे, बनमाली थे, और सर्वाभरण भूषित सब प्रकार के आभूषणों से भूषित, पीतवासा, और भगवान के वस्त्र पीले थे, महोरस्क महाउरस्क छाती बहुत चौड़ी थी, सुमृष्ट मणि कुंडल, और मणि के कुंडल पहने थे, उस कुंडल पर पॉलिश किया गया था, बहुत चमक रहा था सुमृष्ट। बहुत चमक रहा था सुमृष्ट मणि कुंडल, मृष्ट का अर्थ मार्जन, पॉलिश करने, तो पॉलिश किया था, चमचम चमक रहा था कुंडल, मणि का कुंडल ऐसे पहने थे। स्निग्ध कुंचित केशांत, और उनके केश स्निग्ध थे, स्निग्ध का अर्थ जिसमें स्नेह लगाया गया था, तेल लगाया गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान के केस में तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप स्निग्ध रहता है, स्निग्ध और कुंचित घुंघराले केशांत, केस के अंतिम जो छोर थे वह घुंघराले थे अपने आप, स्निग्ध कुंचित केशांत सुभग सिंह विक्रम। और भगवान धन्वंतरी बड़े ही सुंदर थे, सुभग सिंह विक्रम, जब चल रहे थे तो सिंह के चाल जैसे चल रहे। सिंह चलता है तो बहुत संकित होकर के नहीं चलता है, उसको कोई भय नहीं होता है कि उसको कोई हाथी या दूसरा जीव आकर के मारेगा। जिसको भय होता है वो इधर उधर दिखता चलता है, दूसरा जानवर। लेकिन सिंह चलता है तो बहुत मस्ती से चलता है। भगवान प्रकट हुए हैं, इतने बलवान हैं, सिंह की चाल चल रहे हैं, सब हैं, लेकिन वे एक अवसर देना चाहते हैं कि असुरों की जो बेईमानी की नियत है वो दुनिया में प्रकट हो जाए कि कितने खल हैं। तो हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुआ, उस पर लिखा था अमृतम, संस्कृत में देवनागरी में लिखा हुआ था, बस अंग्रेजी में नहीं लिखा गया था। अमृतम अपने आप लिखा हुआ था और पैक था बिल्कुल, उसको लेकर के श्री भगवान प्रकट हुए। अमृता पूर्ण कलशम, अमृत से आपूर्ण लबालब भरा हुआ कलश, सोने का कलश था, उसको लेकर के प्रकट हुए। बिभ्रत मतलब धारण किए हुए थे, बलय भूषित भगवान ऐसे लिए थे अमृत का कलश, तो उनके कंकड़ दिखाई पड़ रहे हैं हाथ में, बहुत सुंदर बलय पहने थे, कंकड़ पहने थे। ये कौन है महाराज परीक्षित यदि पूछे तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सवई भगवत साक्षात विष्णु रंसांश संभव, वे साक्षात श्री भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए, संभव भगवान के अंश हैं। धन्वंतरी रीति ख्यात और धन्वंतरी इस नाम से विख्यात हैं, आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, आयुर्वेद की केवल पढ़ाई नहीं किए हैं, स्वयं यही रचयिता हैं, आयुर्वेद दृक् आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। आयुर्वेद का अर्थ है जो वेद आयु को बढ़ाता है, सुखी रखता है, स्वस्थ रखता है सबको। उसमें अनेक प्रकार की दवाओं का वर्णन है, अनेक प्रकार के रोगों के विषय में कहा गया है, इस रोग की ये दवा है, ऐसे है। तो इसका प्रवर्तन भगवान धन्वंतरी ने किया है, और इतना इनका नाम महान है इस विषय में कि जो व्यक्ति यदि धन्वंतरी यह शुभ नाम उच्चारण करता है तो उसके रोग मिट जाते हैं। बड़े बड़े वैद्यों ने, चरक ने, सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में इस बात को लिखा है कि कोई भी दवा पिलाते समय भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दवा तभी काम करती है जब भगवान का नाम लिया जाता है। असली भगवान ही रोग को दूर करते हैं, तो इन्हीं भगवान का स्मरण किया जाता है, भगवान धन्वंतरी का। नवम स्कंध में लिखा गया है कि इनका नाम लेने से बड़े बड़े रोग मिट जाते हैं। तो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, और यज्ञ भाग जो देवताओं को यज्ञ भाग दिया जाता है तो उसमें यज्ञ भोक्ता के रूप में भी भगवान धन्वंतरी एक हैं, यज्ञ भाग के भोक्ता। तमालोक्यासुरा सर्वे कलशम चामृता भृतम, तो असुर सब ध्यान से देख रहे थे, और वो भी सब संस्कृत पढ़े ही हुए हैं, तुरंत समझ गए। भगवान धन्वंतरी को देखे और कलशम च कलश को देखे, बस इसी के लिए वो मथ ही रहे थे। कैसा कलश था? अमृताभृतम, अमृत से आभृतम भरा हुआ, उन्होंने देखा, असुरों ने देखा, एक चकार इसमें लगाया गया है, तम आलोक्य और कलशं च आलोक्य। ये लोग उस पुरुष को देखे धन्वंतरी जी को और उनके हाथ में कलश देखे, बस देखना था। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लिप्संतः सर्व वस्तुनि कलशं तरसा आहरन। वो तो सारी वस्तुओं के लोलुप थे, दैत थे। जब ही देखे भगवान धन्वंतरी के हाथ में कलश, तो आ करके झपट करके भाग चले, तरसा बहुत वेग से। वो सोचे कि कहीं ये छीनने की कोशिश ना करे, लेकिन भगवान तो अपनी सिधाई दिखा रहे थे, उनको तो यही दिखाना था कि इन बेईमानों को एक बूंद नहीं देना है। वो चाहते तो पकड़ लेते, वो क्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अवसर दिया। पाप करने वालों को, बेईमानी करने वालों को भगवान एक बार अवसर देते हैं, ठीक है कर लो। भगवान के हाथ से छीन कर भाग रहे हैं। देखिए ये असुरों की नियत जरा देख। वहीं देवता लोग भी देख रहे हैं भगवान को, कलश को भी देख, लेकिन देवता तो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त तो पहले भगवान को कोई चीज अर्पित करते हैं, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पण। इतने परिश्रम से अमृत उत्पन्न हुआ है, तो भक्त तो वो है जो पहले भगवान को अर्पित करता है। यही भक्ति है वास्तव में, भगवान के इंद्रियों को तृप्त करने की चेष्टा करना। और असुर का या अभक्त का यही लक्षण है कि वह किसी भी वस्तु से अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, भगवान का तो विचार ही नहीं करता है। यही देवता में और असुर में भेद है। तो वे देखे अमृत के कलश को तो तरसा आहरण, तरसा बिगेन, बहुत वेग से कि कोई देवता न ले ले न ये पकड़े रहे, जहां से भगवान के हाथों से अमृत कलश छीने और भाग चले। जब भाग चले और अमृत लिखा ही था, सब लोग समझ गए कि अमृत है, तो देवता लोग नियमाने असुरेश तस्मिन कलशे अमृत भाजने विषण मनसो देवा हरिम शरण मागेलु। जब देवताओं ने देखा कि असुर अमृत ले भागे, तो वे बड़े खिन्न हुए, लगभग रोने ही लगे और भगवान हरि की शरण में आए। देखिए अब ये भी उपाय भगवान को ही करना है कि अमृत चला गया। तो जैसे बच्चे अपने समर्थ पिता की शरण में रहते हैं, वैसे देवगण भगवान की शरण में आए। भगवान की सहज शक्ति पर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भगवान कोई उपाय करेंगे। तो आए, बस अब चेहरा दिखाना ही काफी था, अब कहने की जरूरत कुछ नहीं पड़ी। और भगवान तो देख ही रहे थे, वो ले गए भाग चले। तो विषण मनस, देवता सभी भगवान की शरण में आए। कुछ लोग कह रहे होंगे कि इतना मेहनत किया गया, लाने में मर गए, फिर मुंद्राचल आया, विष उत्पन्न हुआ, क्या क्या उत्पन्न हुआ, जिसके लिए समुद्र मंथन किया गया वह अमृत ही हाथ से चला गया। तो भगवान ने यही प्रतिज्ञा किया था कि आप लोग अमृत लेंगे, दैत्यों को केवल परिश्रम हाथ लगेगा, और हो गया उल्टा, वो लोग ले भागे। तो जब रो रहे थे भगवान की शरण में हो करके, तो भगवान ने उनको उनके दीनता को, इति तद दैन्य मालोक्य भगवान भृत काम कृत मा खिद्यता मिथोर्थम वो साधय्ये स्वमाया। जो देवता खिन्न थे तो श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान अपने भक्तों के कामना को पूरा करते हैं। भृत्य काम कृत, भृत्य भक्तों को कहते हैं, जो भगवान की सेवा में रहते हैं उनको कोई भी कामना होती है तो उस कामना को श्री भगवान पूरा करते हैं। भृत काम कर, काम मतलब कामना, मनोरथ, अपने भक्तों के मनोरथ को श्री भगवान पूरा करते हैं, इनका स्वभाव है। तो उनके दीनता को, उनके दैन्य को देखकर श्री भगवान ने कहा मा खिद्यतः, सबसे कहा खेद मत करो, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं अपनी माया से आपका अर्थ साधित करूंगा, आपका जो मनोरथ है मैं पूरा करूंगा, चिंता मत कीजिए, सब बस हरे कृष्ण कीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। वो लोग रो रहे थे तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि मां खिद देता, खेद मत करो, चिंता मत करो, मैं उन असुरों में ही कलह उत्पन्न करके और आप लोगों का काम पूरा करूंगा, चिंता मत कीजिए। मिथह अर्थम साधे, कोई पी नहीं पाएगा, ले गए हैं लेकिन वे पी नहीं पाएंगे, भगवान के कहने का आशय यह था। जब ही भगवान ने यह संकल्प किया कि मैं अपने भक्तों को अमृत पिलाऊंगा दैत्यों से लेकर, तो मिथह कलिह अभूत तेषां तदर्थे तर्स चेतसां अहम पूर्वम न त्वम न त्वम इति प्रभु। हे महाराज परीक्षित, आप प्रभु हैं, आप काम क्रोध आदि को जीत लिए हैं, जो काम को जीता है वही न प्रसाद खाएगा, जो काम को नहीं जीता है तो अभी भोग लगा नहीं भगवान को तब तक छीन कर भाग चला। धैर्य रखना चाहिए, भगवान को भोग लगने में कुछ देर होती है, तो भक्त वो है जो प्रतीक्षा करता है, ठीक है भोग लगने दीजिए। और वास्तव में सज्जन का, भक्त का ये लक्षण होता है कि दूसरों को खाने देता है, ठीक है खा लें तो हम बाद में खाएंगे, सहज धैर्य होता है। लेकिन असुरों में तो ठीक विपरीत, मिथह कलिह अभूत तेषां, उन दैत्यों में परस्पर में कलह उत्पन्न हो गया, किस लिए, तदर्थ है अमृत के लिए, क्योंकि अमृत के प्रति सबके मन में तर्स था, तृष्णा थी, हम पिएंगे, जो भी बोलता था अहम पूर्वम पाश्यामि इति, मैं पहले पीऊंगा, सब यही बोलते थे, ये भी एक वाक्य बोलते थे, न त्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम, त्वम न, यही सुनाई पड़ रहा था। तो कहता हम पहले पिएंगे तो उसका विपक्ष जो झगड़ा कर रहे थे वो कहते थे नहीं तुम नहीं तुम नहीं तुम नहीं हम पहले बस यही शब्द यही कीर्तन सुनाई पड़ रहा, मैं पहले पीऊंगा, तुम नहीं पियो तुम नहीं पियो, तुम केवल खड़ा था सांप को पकड़कर, तुम खींच नहीं रहा था, बाप रे मर गया काम करते करते, पहले मुझे पीने दो, मुझे पीने दो। और वहां बाप पुत्र या पिता दादा आदि का संबंध सब चला गया, आपस में सब कहने लगे, कोई ध्यान नहीं रहा था कि हाँ हमारे पिताजी हैं पहले पी ले, या पिताजी ये नहीं सोच रहे थे हम तो बूढ़े हुए पहले बच्चे को पी लेने दें, नहीं कुछ नहीं, तर्स चेतसाम तदर्थे तर्स चेतसाम, अमृत के लिए उनके मन में भयंकर तृष्णा उत्पन्न हुई, लालसा, और वे बस झगड़ा करने लगे, अहम पूर्वम पूर्वम मैंने पहले पहले मैं ठीक है पहले मुझे पी लेने दो तब तुमको दूंगा, नहीं तुम नहीं तुम नहीं हम पिएंगे हम पिएंगे हम पिएंगे हम पिएंगे तुम नहीं बस इस झगड़े में कोई पी नहीं पाया। अरे बहुत देर तक झगड़ा चला है, देखिए भगवान किस तरह से उपाय करते हैं। अब क्या आशा की जा सकती थी कि दैत्यों के हाथ में जो चीज लग गई अब वो मिलने वाली है, लेकिन हाथ में लग करके क्या करेगी, तो पी नहीं पाए, तो जो कमजोर थे दैत्यों में, बिल्कुल कमजोर, वो बेचारे छीना झपटी तो नहीं कर रहे थे, और छीना झपटी मची हुई है हजारों दैत्यों में आपस में, तो अमृत का कलश हम तो पैक कहते हैं, लेकिन वास्तव में पैक नहीं था, कोई जरूरत नहीं है पैक करने। छीना झपटी हो रही थी, पहले हम पियेंगे, कोई लेकर के पीने की कोशिश करता था, दूसरा छीन लेता था, तीसरा छीन लेता था, ऐसे इस तरह से। तो कमजोर जो थे वे नारा बोल रहे थे, देवा स्वभागम अर्हन्ति, देवताओं का भी इसमें हिस्सा है, वे भी बेचारे मेहनत किए हैं। तो ये सोचते थे कि उनको जब दिया जाएगा तो हमको भी मिल जाएगा। कमजोर थे वे ऐसा कह रहे थे, दलित वर्ग कह रहे थे। देवा स्वभागम अर्हन्ति, देवता हमारे भाई हैं, उनको भी मिलना चाहिए। जो लेकर के भागे थे उनको कहते थे, देश के गद्दारों को एक धक्का और दो। ये बेईमानी है, ये है, वो है, सबके प्रति समभाव रखना चाहिए, सबने मेहनत किया है। सत्र जाग इवे तस्मिन ऐसा धर्म सनातन, जब कोई काम सामाजिक होता है, सब मिल करके करते हैं, मिल करके सामान्य पूंजी लगाए हैं, तो उस कर्म में जो फल बनता है उसमें सबका समान अधिकार होता है, ये सनातन धर्म कहता है। वाह जी वाह, और सनातन धर्म की दुहाई देने में, ऐसा धर्म सनातन, ये सदा से चला आया हुआ धर्म है। बेईमानी नहीं होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। ये लोग इस तरह से बोल रहे थे। तो दुर्बला प्रबलान राजन गृहित कलशान, जो गृहित कलशान, जो कलश को लेकर के भागते थे, पीना चाहते थे, तो उनके प्रति जो दुर्बल थे वे इसी तरह का नारा बोलते थे। विषमता नहीं होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, सभी भाई हैं हमारे, ये हम देवता भी कम मेहनत नहीं किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। लेकिन वास्तविक बात यह नहीं थी कि वो देवताओं को देना चाहते थे। इति स्वान प्रत्येधन वही दैतेया जात मत्सरा, इनमें मत्सरता उत्पन्न हुई थी, दाह उत्पन्न हुआ था कि वो साला ना पी जाए, हम कैसे बिना पिए रहेंगे, ये भावना उत्पन्न हुई थी। तो इस तरह से वो इसलिए नारा बोल रहे थे, देवताओं को भी मिलना चाहिए, देवताओं को मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, तो यही चल रहा था। और वो जो बलवान थे वो काहे को सुनने जाए कोई नाता, कोई नारा, कोई स्लोगन, वो क्यों सुनने जाए, वो तो पीने के फेर में थे। तदर्थे तर्स चेत सन, इतनी महिमा थी उस अमृत की कि वो सोचते थे हम पी लें, पी करके अमर हो जाएं, बलवान हो जाएं। तो यही चल रहा था, छीना झपटी मार पीट आपस में, और जो निर्बल थे दुर्बला, वो प्रबलों को, गृहित कलशों को ये सब प्रतिषेधन कर रहे थे, निवारण कर रहे थे, नहीं तुम नहीं, तुम नहीं, ये अधर्म है, ये अधर्म है, सनातन धर्म ये नहीं कहता है, सबके प्रति समभाव रखना चाहिए, सभी मेहनत किए हैं, सभी पहाड़ उठा करके लाने में मेहनत किए हैं, मथने में सब मेहनत किए हैं, सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इस तरह से बोल रहे थे। एतस्मिन अंतरे विष्णु सर्वोपाय विधिश्वर जोषित रूपम अनिर्देशम दधार परमाद्भुतम। जब दैत्य लोग आपस में छीना झपटी कर रहे थे, कोई नहीं पी पाया, इसी बीच में सर्वोपाय वित्त, समस्त उपायों को जानने वाले, कठिन से कठिन परिस्थिति में उपाय निकाल लेने वालों में सबसे अग्रणी हैं भगवान विष्णु। अमृत चला गया था दैत्यों के हाथ में, देखिए उपाय कर रहे हैं बहुत आसानी से। संस्कृत में एक बात कही गई है कि उपायम चिंतयेत प्राज्ञ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि उपाय से काम करे। उपायेन जत कुर्यात् तन्न शक्यं पराक्रमे, जो उपाय से काम होता है वो भारी युद्ध और पराक्रम करने से नहीं हो पाता। जैसे कोई बहुत बड़ा ताला बंद हो गया है किसी का, और चाभी खो गई है तो उपाय करना चाहिए, चाभी को प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए, उसको लगाने तुरंत खुल जाएगा, नहीं तो फिर गाली और हथौड़ा मारो तोड़ो ऐसा। तो उचित यह है कि उपाय किया जाए, उपाय करने से बच्चा भी खोल देगा ताला को। उपाय करना था, क्या उपाय? उपायज्ञों में, उपाय जानने वालों में श्री भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। तो क्या उपाय किए? उपाय यह किए, जोशिद रूपम अनिर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। उन्होंने तुरंत ही एक स्त्री का रूप धारण किया। कैसा स्त्री का रूप था? अनिर्देश्यम। महाराज परीक्षित, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, मेरे वाणी से परे है। इतनी सुंदरी स्त्री, इतना सुंदर, सुखदेव गोस्वामी एक बार कह रहे हैं अनिर्देश्यम, मैं नहीं बता सकता कैसा। या निर्देश्यम, अनिर्देश्यम का एक अर्थ है कि कोई पता नहीं, कोई एड्रेस नहीं, बस अकस्मात भगवान तो स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। तो कहां की वो स्त्री है, किस शहर से आई है, उसका आईडी क्या है, उसके भाई बहन और सब, पिता कौन, कुछ नहीं पता, अनिर्देश्यम। तो भगवान ने स्त्री के रूप में प्रकट हुई, परम अद्भुतम, अद्भुत स्वरूप था उस स्त्री का। परम अद्भुत मतलब परम आश्चर्यजनक, परम सुंदर, परम आकर्षक रूप धारण की। अब ये उपाय करना है इन दुष्टों के लिए, बिना उपाय के काम नहीं होगा। तो भगवान ने उपाय किया। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, भगवान क्यों स्त्री बने, और इसके विषय में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि इन असुरों के साथ छल कपट करना है। तो भगवान ने सोचा कि मैं अपने चतुर्भुज रूप से, इतने सुंदर रूप से, और जो भक्तों भजन करते हैं, इससे छल कपट का काम नहीं करूंगा। धूर्तता है और किसी को धोखा देना, इस रूप से नहीं करना चाहिए। ये हमारा आराध्य स्वरूप है, इसे नहीं करूंगा। स्त्री के रूप से ये सब काम करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का काम है धोखा देना है या झूठ बोलना, छल कपट करना, ये सब स्त्री का काम है। इसलिए भगवान ने स्त्री का रूप बना करके काम किया, ये श्रीपाद सिद्धार्थ स्वामी जी कहते हैं। तो भगवान तो बहुत उपाय जानते हैं, तो केवल स्त्री का ही रूप बनाए, जो जिसके लिए उचित काम है उसी के द्वारा वो काम होना चाहिए। जहां पर मान लीजिए जहां कूड़ा करकट फेंका जाता है तो वही फेंकना चाहिए, अच्छे साफ सुथरे घर में नहीं फेंकना चाहिए। भगवान ने सोचा कि यह काम छल कपट, ये स्त्री शरीर से ही करूंगा, इसीलिए भी स्त्री बन गए। तो उस स्त्री का कुछ वर्णन करते, एक बार सुखदेव गोस्वामी कह दिए अनिर्देश्यम, लेकिन फिर निर्देश कर रहे हैं। प्रेक्षणीयोत्पल श्यामम सर्वावयव सुंदरम समान कर्णाभरणम सुकपोल उन्नसाननम। भगवान का वह स्त्री स्वरूप, मोहिनी स्वरूप, अत्यंत सुंदर था, देखने योग्य, प्रेक्षणीयम, दर्शन करने योग्य। यह दर्शन करने योग्य का मतलब है कि अद्भुत सुंदर, उत्पल श्यामम, और श्याम कमल के समान, सर्वावयव सुंदरम, भगवान मोहिनी के सभी अंग परम सुंदर हैं, समान कर्णाभरणम, उनके परम सुंदर कानों में आभरण है, कुंडल है, और बहुत सुंदर गाल और उन्नत नासिका, उनसे युक्त मुख है, नव जौवन निर्वृत स्तन भार कृषोदरम, नव जौवन है, नई जवानी है, इस कारण से दोनों स्तन बिल्कुल वर्तुल हैं, गोल हैं, और ऐसा लग रहा है कि विधाता ने कमर से हिसा को लेकर के अस्तनों में ही भर दिया है। ये सुखदेव गोस्वामी का इसका मतलब है कि अस्तन बड़े बड़े हैं, कमर बहुत पतली है। मुखा मोदालु रक्ताली झंकारो दुग्न लोचनम, और मुख से इतनी सुवास निकल रही है, सुगंध निकल रही है, मुख के आमोद में भौंरे आ रहे हैं। जब मोहिनी कुछ गुनगुनाती है, कुछ बोलती है, तो उसके मुख से इतनी सुगंध निकल रही है कि उस पर उस सुगंध से भौंरे आकर के भन 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 कर रहे हैं। तो उसके कारण उन भौरों की आवाज से मोहिनी के नेत्र उद्विग्न है, उनको देख करके उद्विग्न होती है, उनकी आवाज सुन करके सुगंध से भौरे मंडरा रहे हैं। मुखा मोदान रक्ताली झंकारो दुग्न लोचन, विभ्रत सुकेश भारण माला मुत्फुल्ल मल्लिकाम, अपने बहुत घने केशों में वह मालती के पुष्पों की माला बांधी हुई है। सुग्रीव कंठाभरणम, और ग्रीवा बहुत सुंदर है, कंठ का आभरण पहनी है, हंसली पहनी है, और सुभुज अंगद भूषितम, बाहों में कंकड़ है, अत्यंत सुंदर भुजाएं हैं, भुजाओं में अंगद है, और बड़े नितंब पर साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, और उस साड़ी के ऊपर सोने की करधनी बांधी हुई है कांची, और लज्जा से युक्त मुस्कान से, लज्जा से युक्त मुस्कान द्वारा उसकी भौहें इधर उधर हो रही हैं, और बड़े ही विलास से देख रही है असुरों पर। इन असुरों को मोहित करने के लिए ही भगवान ने रूप बनाया, तो मुस्कुरा रही है, लज्जा के साथ मुस्कुरा रही है। किसी असुर को भी देख करके ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बेपर्द मुस्कुराए, वो लज्जा के साथ मुस्कुरा रही है असुरों को देख करके, और भौहों से इशारा भी कर रही है। इसके कारण असुरों का काम, उनकी काम वासना हजारों गुना बढ़ गई देखकर। दैत्य जुथप चेतसु कामम उद्दीपयन मुहु, उनकी काम वासना बढ़ गई मोहिनी को देखकर, और अब वे धैर्य नहीं रख सके। और यहां तक कि अमृत पीना भी भूल गए, जिसके हाथ में अमृत का कलश था उसने भी जब मोहिनी को देखा तो अमृत पीना भूल गया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि ते अनन्यतो असुराह पात्रम हरंतस त्यक्त सहृदा, असुरगण आपस में जो पात्र हरण कर रहे थे, अमृत का कलश छीन रहे थे, क्यों छीन रहे थे, क्योंकि त्यक्त सहृदा, एक दूसरे के प्रति स्नेह छोड़ चुके थे। दैत्यों देवताओं के प्रति तो कोई स्नेह का प्रश्न ही नहीं था, अपने भाई बंधु मामा काका ये सब भी स्नेह नाता सब खत्म हो चुका था, कोई नहीं पहचान रहा था, यही असुरों का स्वभाव है। तो त्यक्त सहृदा, परस्पर स्नेह छोड़ चुके थे, और दस्यु धर्माण, दस्यु के स्वभाव को प्राप्त हो गए थे। दस्यु स्वभाव का मतलब है कि अन्याय के द्वारा किसी तरह से, अन्याय से भी अमृत पीना है हमको, हमको पीना है, यही था दस्यु धर्म, लुटेरों का धर्म। कोई पहचान नहीं रहा था कि मेरा भाई है, मेरा बेटा है खास, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, मेरा ये है वो है, सब स्नेह भूल गए। और छिपंत, केवल छीन ही नहीं रहे थे, तिरस्कार के वचन बोल रहे थे, बहुत गाली दे रहे थे परस्पर, छिपंताकार से आक्षेप कर रहे थे, गाली दे रहे थे। अपने संबंधियों में बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से स्नेह करना चाहिए, लेकिन असुर सब भूल गए, और वे एक दूसरे पर गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। इसी बीच हुआ क्या कि आयांतिम ददृशु स्त्रिया, आते हुए उस स्त्री को देखे, आयांतिम स्त्री आ रही थी, भगवान मोहिनी रूप से उधर ही आ रहे थे जिधर से असुर लोग भागते हुए जा रहे थे छिनते हुए। तो आयांतिम स्त्रियम ददृशु दृष्टवंत आती हुई इस मोहिनी को इन लोगों ने देखा। देखते ही सबके मुख पर यही वचन आया, अहो रूपम अहो धाम अहो अश्याम नवम वय इति ते ताम अभिद्रुत्य प्रच्छुर जाते हैं छा। अरे ये रूप देखो, अहो सौंदर्य कैसा है, शरीर की कांति कैसी है, अरे कितना सुंदर शरीर है, इसकी नई जवानी देखो, ये कहते हुए और चल दिए। जो अमृत का कलश लिया था वो भी ऐसे ही चला, पीने की कोई इच्छा नहीं रही, ये ध्यान ही नहीं रहा। और वास्तव में ये तुच्छ अमृत किस काम का था, उनके दृष्टि में महा अमृत आ रहा है सामने, तो इसको तो पहले पियो। और अहो का अर्थ है कि अरे इसको पियो, क्या उसके फेरे में पड़े हो पानी के, इसको देखो, ये रूप देखो, अहो रूपम। भगवान तो अद्भुत सुंदर स्त्री है। अहो रूपम और अहो धाम, धाम का अर्थ है कांति, अरे इसकी चमक देखो, कितनी सुंदरी है, कितना इसका तेज है, तो भगवान है ना। और अहो अश्या नवम वय, इसकी नई उम्र देखो, अद्भुत है। इति ते ताम अभिद्रुत्य, इस तरह से कहते हुए और अभिद्रुत्य तेज गति से दौड़कर उसके पास चले गए। और वो ऐसे मस्त होकर के मोहिनी चल रहे थे कि उसको कोई ये चिंता नहीं थी, वो तो इसीलिए आ रहे थे कि ये मोहित हम पर हो जाए, तो ये लोग दौड़ करके उसके पास चले गए। यह भी असुरों का स्वभाव है, किसी अनजान लड़की के पास और इस तरह से अहो रूपम अहो धाम अहो अश्याम नवम वय कहते हुए उसके निकट चले गए। आखिर असुर है ना, दैत्य है ना, इनके लिए तो कोई सभ्य व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ये लोग सब पहुंचे और एक भी प्रतिवाद नहीं था, उसमें से एक भी दानव ऐसा नहीं था जो ये सोचता हो कि नहीं नहीं इसे बात नहीं करना चाहिए, नहीं, सब तैयार उसी के लिए। और जात हृच्छया, हृच्छय कामदेव को कहते हैं, उनके भीतर काम वासना बहुत जग गई और वे जा करके पप्रच्छ पूछने लगे। इनको दिखाया जा रहा, सुखदेव गोसाई बोल रहे कितने निर्लज्ज थे ये, और जाकर के पूछते हैं, का तुम कंज पला साक्षी कुतोबा किम चिकीर्षसी कश्यासि बदबा मोरू मथनंती व मनांसी न। जाते जाते संबोधन कर रहे हैं, अरे तुम्हारी आंखें कमल से भी अधिक सुंदर हैं। कंज पलाश साक्षी, कंज पलाश कमल के पंखुड़ियों को, उसके पत्तों को पलाश कहते हैं, कोमल कोमल पत्तों, कमल दल के समान तुम्हारे नेत्र परम सुंदर हैं। हे पद्म पलाश साक्षी, हे कंज पलाश साक्षी, तुम कौन हो, तुम का तुम कौन हो, मतलब का क्या पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि तुम्हें किसी दैत्य वंश में जन्म ली हो कि देवता के यहां जन्म ली हो, ऋषि के यहां जन्म ली हो, मनुष्यों के यहां तो तुम जन्म नहीं ली हो, क्योंकि मनुष्य में इतने सुंदर नहीं होते हैं कोई, उनके कहने का आशय यह था, आगे इस बात को प्रकट कर रहे, तुम कौन हो और कुतो कहां से आई हो, तुम्हारा गांव कहां है, इससे तुमको क्या मतलब है, लड़की जा रही है तो इसे इस तरह का प्रश्न करना और ऐसा संबोधन करना जिसे अपनी काम वासना व्यक्त हो रही है, तुम्हारी आंख बहुत सुंदर है, तुम्हारी जांघें बहुत सुंदर है, इस तरह की बात बोल रहे हैं, बाम उरु, बाम माने मनोहर, मनोहरौ उरु जस्या, जिसकी जांघें बहुत सुंदर हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं, तुम्हारी जांघें सुंदर हैं, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, तो कुतो वा तुम कहां से आई हो, तुम कौन हो, किस जात की हो और कहां से आई हो और किम चिकीर्षसी, इस स्थान में तुम्हारा क्या काम है, मे आई हेल्प यू। तो इस स्थान में तुम्हारा क्या प्रयोजन है, किस काम से आई हो और कहां से आई हो, हे सुंदर उरु वाली, तुम हमारे मनों को, मन को मथ सी रही हो, ईवर लगा रहे हैं, ये भी थोड़ा शब्द तरह से बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमारे मन को मथ दिया है तुमने, पूरा पूरा मथ दिया है, कहते तुम हमारे मनों को मथ सी रही हो, अर्थात तुम्हें प्राप्त करने की बहुत बड़ी कामना हो रही है, इसको छिपा करके बोल रहे हैं, ईव लगा कर, मथनंती व मनांसी में, मनांस न, हमारे मनों को तुम मथ रही हो। अस्माकम मनांसी मथनंती, वो मथ रही है, अर्थात तुमने मन जा रहा है, तुम बहुत पसंद पड़ रही हो, ये बात कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा दबा कर कह रहे हैं, छिपा करके कह रहे हैं, क्योंकि भगवान से बात हो रही है, इसीलिए असुर लोग भी वास्तव में परम धन्य है कि भगवान के साथ बात हो रही है, दर्शन कर रहे हैं, ये कोई अभागे नहीं है और न तो ये कोई दूसरी स्त्री है, ये श्री भगवान है, लीला कर रहे हैं। तो तुम कहां से आई हो, कहां से मतलब किस गांव से, किस नगर से, कहां की हो, उनके पूछने का आशय यही था कि विभावरी से हो कि अलकापुरी से हो, मतलब जो देवताओं के नगर है, कि दिल्ली से हो, चेन्नई से हो, ये तो पूछ ही नहीं सकते, मनुष्य लोक की तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन देवताओं के लोक से पूछ रहे कहां से आई हो, उनका आशय यही था कि अलकापुरी से आई हो या अमरावती से आई हो, मतलब इंद्र के नगरी से, या दैत्यों में किसी की तुम पुत्री हो, कश्य असी, किसकी हो, किसकी हो, ये तो प्रश्न तब उठता है जब किसी का विवाह हो जाता है, तो वह पति की हो जाती है स्त्री, और विवाह के पहले पिता की रहती है, और वृद्ध अवस्था में अपने ज्येष्ठ पुत्र के पीते हो जाती है, अब उसके अधीन रहती है, तो तुम किसकी हो। तो यहां ये प्रश्न है सीधा कि किसकी पुत्री हो, क्योंकि आगे ये कहते हैं हम समझ गए कि तुम बिल्कुल अविवाहिता हो, और लगता है कि विवाह करने के लिए ही तुम आई हो, यहां मेला लगा हुआ है समुद्र तट पर, तो शायद तुम अपने स्वयंवर के लिए पधारी हो, हम ऐसा अनुमान करते हैं, इसको कहे नहीं हुए लेकिन मन में रख रहे हैं। पूछे किम चिकीर्षसी, यह किम चिकीर्षसी, इस स्थान पर क्यों आई हो, तो अपने से कहा हाँ हम समझ गए, सब यह देवता दैत्य जुटे हुए हैं, तो शायद तुम अपना वर ढूंढने के लिए आई हो, इस तरह से पूछना, कहां से आई हो, क्या काम है यहां पर, तुम्हारा अभिप्राय क्या है, क्यों यहां आई हो, किस लिए आई हो, और अगर हम तुम्हारे अभिप्राय में कुछ मदद कर सकते हैं तो ये हमारे जीवन का परम भाग्य होगा, कुछ आज्ञा दो, हम तुम्हारी क्या सेवा करें, ये पूछने का आशय। बाकी इनके अंदर प्रत्येक के मन में, विशेष करके जो दैत्यों में हेड थे, बड़े बड़े लोग थे, वो लोग तो यही सोचते थे कि इसके साथ मैं विवाह करूंगा, इसके साथ मैं विवाह करूंगा, तो उसको अनुकूल बनाना चाहते हैं, उसे ऐसा वचन बोल रहे हैं कि किम परह प्रियवादिनम, मधुर बोलने वाले के लिए कौन पराया है, किसी को अपना बनाया जा सकता है। इस नीति में दैत्य लोग बहुत निपुण हैं, ऐसा वचन बोले कि ये हमसे विवाह करे। प्रत्येक के मन में यही भावना है, यही लालसा है, और अमृत पीना तो पूरा भूल ही चुके हैं। तो वैसे पूछ रहे हैं, तुम कहां, तुम किस जाति की हो, या देवी हो, या दैत्य हो, या मानवी हो, किस समाज से आई हो, कहां से आई हो, और इस स्थान पर तुम्हारा क्या काम है, किसकी हो, किसकी पुत्री हो, बद बामोरू, हे मनोहर जांगो वाली, बोलो हमें बताओ। मतंती मनान सुना, तुम हमारे मन को मत सी रही हो, अर्थात तुम्हारे लिए हमारा मन व्याकुल सा हो रहा है। किम चिकित्सी अत्र आगमनेन, किम चिकित्सी कर्तुम इच्छसी, कस्य कन्या असि, कथय। तो ये कह करके कहते हैं, ये जब मोहिनी जी को देखे दैत्य, तो एक एक अंगों को, पैर को, हाथ और अधर को, कुंडल कान सब कुछ देख रहे हैं, तो आपस में ये बड़े बड़े कवि भी थे, बड़े बड़े विद्वान दैत्य लोग थे, देवताओं के बराबर इन्हीं को रखा गया है, मनुष्यों की तो कोई गिनती ही नहीं है, देवताओं के समकक्ष इनका पोजीशन है। तो ये लगे कहने, कुछ कविता बनाने लगे, और मोहिनी के अंगों को देखकर, शरीर के विविध गहनों को, मुस्कान को, इसको देख करके बोलते कहते हैं, हमने समुद्र मंथन बेकार किया, पर समुद्र मंथन ही कारण बना तुम्हारे दर्शन में, तुम समुद्र से तो नहीं निकली हो, लेकिन हम लोग समुद्र मंथन कर रहे थे तो इसलिए इस स्पॉट पर, इस घटना पर तुम मिल गई, अमृत के लिए हम झगड़ा कर रहे थे तो मिल गई, मेरा अहो भाग्य है, लेकिन देवताओं का कर्म फूटा हुआ है, उनको तुम नहीं मिले, 14 रत्न तो तुम्हारे शरीर के भीतर है, तो उसको गिना रहे हैं यहां पर, हम बड़े भाग्यशाली, हमको एक ही जगह पर, एक ही व्यक्ति में सब रत्न मिल गए, और देवता ये मूढ़ समुद्र मंथन करके उनका कर्म फूटा हुआ है, भाग्य नष्ट हो चुका है, हमको कुछ नहीं मिला। तो ये कहते हैं क्या क्या 14 रत्न था, तो 9, 10, 11 तो गिनाया जा चुका है, रत्न 14 निकले थे, पहला रत्न था 20 भी एक रत्न है जो निकला था समुद्र से, उसको भगवान शिव ले लिए, श्री जी प्रकट हुई थी, लक्ष्मी जी वो भगवान की प्रेयसी बनी, वो तो अनादि काल से ही प्रेयसी हैं, ये 2 हुआ, कौस्तुभ मणि 3, कामधेनु 4 तो ऋषियों ने लिया, और कल्प वृक्ष तो देवताओं ने लिया, कितने हुए, और उच्च सर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, वारुणी कन्या, धन्वंतरी भगवान, ये भी एक रत्न है, और अमृत, इसके अलावा शंख उत्पन्न हुआ था जिसको भगवान ने दिया, और धनुष उसको भी भगवान ने दिया, सारंग धनुष, ये समुद्र से उत्पन्न हुआ था। तो शंख, धनुष और चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा, उसको दिया गया भगवान शिव को शीतल करने के लिए, क्योंकि जहर पिए थे तो आग फूका था उनको, ऐसा उनको शीतलता दे चंद्रमा, इसके लिए उनके मस्तक पर दिया गया, ये चंद्रमावली हुए। ये दैत्य लोग मोहिनी के अंगों में सब रत्न देख रहे हैं, तो कहते हैं, हास्यम शंख निभम नितंग नितंब तुलगौ रंभादि जंघा द्वयम, हास्यम शंख निभम, तुम जब हंसती हो तो यही शंख है, वो शंख तो हड्डी है किसी जीव का, वो किस काम का, ऐसे वो लोग कहते हैं। उस शंख को चाहे कोई ले फूंके, लेकिन जो तुम बोलती हो क्या शंख बोलेगा, और तुम जो हंसती हो यही है शंख। हास्यम शंख निभम, ये रत्न हमको मिला है, शंख मिला, हास्यम तुम्हारी हंसी में शंख है, नितंब तुरगो, और तुम्हारे दोनों नितंब दो घोड़े हैं, उच्च सर्वा घोड़ा किसी काम का नहीं है इसके आगे, उसको तो बलि को तो एक घोड़ा मिला, हम ये दो घोड़े हैं, नितंब तुरगो, रंभाद जंघा द्वयम, तुम्हारी जांघों में रंभा और उर्वशी आदि स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं, और वैद्यस्ते हृदयम, तुम्हारा हृदय ही धन्वंतरी वैद्य है। कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारा आलिंगन करे तो उसका उसकी सारी चिंता रोग ग्लानि आदि खत्म हो जाएगी, तो तुम्हारा हृदय ही सबसे सुंदर वैद्य है, धन्वंतरी उसके आगे कुछ नहीं। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, ते हृदयम वैद्य धन्वंतरी, और धनुष च भृकुटी, और धनुष तुम्हारी भ्रिकुटी में ही धनुष है, और वो भी दो धनुष है, दाएं बाएं नेत्र में दो धनुष है, तो तुम्हारी भ्रिकुटी में धनुष है, और मध्यम चते दर्शनम, और तुम्हारा दर्शन यह बाणड़ी मदिरा है, तुमको देखने पर नशा चढ़ जाता है, बल्कि हो सकता है वो बाणड़ी मदिरा पीने पर नशा न आवे, लेकिन तुमको देखने पर तो फिर मन होश में नहीं रह पाता, मदिरा चढ़ जाती है। वास्तव में ये जो प्रसिद्ध मदिरा है, शराब है, तो पीने पर नशा चढ़ता है, लेकिन स्त्री को देखने पर नशा चढ़ जाता है, इसीलिए उसको प्रमदा कहते हैं, प्रकृष्ट मदा, श्रेष्ठ मदा। ये कहते तुम्हारे दर्शन में वारणी मदिरा है। वक्त्रम पूर्ण शशि, तुम्हारा मुख पूर्ण चंद्रमा है। अरे उस शिव जी को तो अधूरा चंद्रमा मिला, प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन तुम्हारा मुख तो पूर्ण शशि, पूर्ण चंद्र है। वक्त्रम पूर्ण शशि सुधाधर लता, और असली अमृत तुम्हारे अधर का रस है, असली अमृत तो है, यह अमृत किसी काम का नहीं। तो असली अमृत तुम्हारे अधर में है, दंता मणि श्रेणय, और तुम्हारे दांत ही कौस्तुभवादी मणि है, मणि भी उतना नहीं जगमग कर रहा है जितने तुम्हारे दांत चमक रहे हैं, तो असली मणि तो ये है। और कांति श्री, तुम्हारे शरीर की जो चमक है, कांति है, उसमें लक्ष्मी है, वही लक्ष्मी है, कांति श्री गमनम गज, और तुम्हारी चाल में ऐरावत हाथी है, तो तुम गज गामनी हो, तुम्हारी चाल में ऐरावत हाथी है, और परिमलस्ते पारिजात द्रुम, और तुम्हारे शरीर से जो सुगंध निकल रही है परिमल, इसी यही है कल्प वृक्ष पारिजात। और वाणी काम दुघा, तुम मधुर वचन बोलती हो तो तुम्हारी वाणी में कामधेनु है, सुनने वाले की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, मनोरथ पूरा होता है, सुख मिलता है। तो वाणी काम दुघा, और कटाक्ष लहरी तत्काल कूटम विषम, और तुम जब तिरछी चितवन से देखती हो, तिरछी नजर से, तो यही है कालकूट विष, ये तो मार ही देता है। ये इस तरह से बोल रहा है, इसमें कालकूट विष है। हे तनवंग मुधैव किम्न मथितम मूढ़ सुरय सागर, हे तनवंगी छिड़कटे वाले, क्या देवताओं ने व्यर्थ ही समुद्र मंथन नहीं किया, क्या फायदा हुआ उससे, बिना समुद्र मंथन के ही एक जगह पर 14 रत्न हमको मिल गए, हम धन्य हो गए। इस तरह से बोल रहे हैं मोहिनी जी, तो जो चक्कर में डालेगी मोहिनी वो तो बाद में पता चलेगा, इस तरह से अपना सौभाग्य मांग रहे हैं। फिर कह रहे हैं, जब पूछे थे कि तुम किस गांव की हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जाति की हो, किस अभिप्राय से इस स्थान पर आई हो, तो फिर कहते हैं, अपने आप कहते हैं, छोड़ो क्या जरूरत है पूछने की। वो तो प्रत्येक असुर चाहता है कि हमारे अनुकूल हो जाए, तो उसको अनुकूल लगने वाली बात पूछेगा, तो फिर अपने आप ही इसको रोक दिए, कोई बात नहीं, मत बताओ कि कहां से आई हो, क्या जरूरत है। हम अपना सौभाग्य मानते हैं। आस्तामिदम त्वदर्शनम तु ईश्वरेण इव संपादितम, छोड़ो इन बातों को, हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा दर्शन, तुम्हारे साथ हमारा संजोग, यह ईश्वर के द्वारा ही रचा गया है, और भगवान हम पर बहुत कृपालु हैं। भगवान माने ईश्वर, जो विश्व की रचना करते हैं, तो भगवान माने वो अजित भगवान को नहीं समझ रहे थे, कहते ईश्वर ने तुमको मिलाया है, और हमारे प्रति विधाता बहुत दयालु है, सघृण है, घृणा माने स्नेह, हमारे प्रति स्नेह है विधाता का, इसीलिए कृपा करके परमेश्वर ने ही तुमको यहां पर भेजा है। नूनम तम विधिना सुभ्रु प्रेषितासी शरीरिणाम सर्वेन्द्रिय मन प्रीतिम विधातुम सघृणेन किम। हे सुभ्रु, हे सुशोभन भावों वाली, परम दयालु परमेश्वर के द्वारा नूनम तम शरीरिणाम सर्वेन्द्रिय मन प्रीतिम विधातुम प्रेषिता, शरीरधारियों के सब प्रकार, सभी इंद्रियों को और मन को सुख देने वाले, प्रसन्न करने वाले तुमको, ने प्रसन्न करने की इच्छा से परमेश्वर ने तुमको हम लोगों के पास भेजा है। तुम्हें हम जब पा जाएंगे, छिपा हुआ अर्थ था, तो हमारी सारी इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगी, हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा, हम ऐसा मान लेंगे कि हमारे जीवन में हमने सबसे बड़ी कमाई किया कि तुम मिल गई। ये भगवान हमारे प्रति बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं कि तुमको यहां पर भेज, और वास्तव में तुम अपने से नहीं आई हो, ईश्वर हम लोगों पर कृपा करके तुमको भेज जाए। मतलब मोहिनी के संयोग से मान रहे हैं कि यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन्य भाग्य है कि तुम मिली हो, पर छोड़ो ये बताने क्या जरूरत है कहां से आई हो, ये पता नहीं कहां से आई है, किस लिए आई है, लेकिन ये इनको पता हो गया कि हम पर कृपा करके परमेश्वर ने भेजा है, और हमारी इंद्रियों को, आंख को, त्वक को, जिह्वा को, कान को, सबको तृप्त करने के लिए, मन को सुखी करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है, क्योंकि भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है, परमेश्वर हम पर बहुत प्रसन्न है। दैत्यों का भगवान भी कुछ निराकार सिराकार होता ही है, तो ये लोग भी इसी तरह से बोल रहे हैं, ईश्वर ने, भगवान ने हमको कृपा करके भेजा है तुमको, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, तुम जहां से भी आई हो, किसी भी जात की हो, कुछ भी करने के लिए आई हो, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि विधाता हम पर बहुत स्नेह करता है, तुमको भेजा है हमें सुख देने के लिए। अर्थात साफ प्रस्ताव है कि तुम हमारी पत्नी बनोगी और बस मैं धन्य हो जाऊंगा, और ये जानने की क्या जरूरत है कि तुम कहां की हो, क्या हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, असुरों को इसकी कोई जरूरत भी नहीं होती, वो कहीं भी कोई वेद शास्त्र नहीं देखते हैं, बस इनको यौन संबंध चाहिए, इंद्रिय संबंध चाहिए, बस ये देखिए इनकी भाषा में बात आ रही है। और एक स्त्री मिल गई है रास्ता चलते हुए, तो कहते हैं कि ईश्वर हम पर पूरा प्रसन्न है और तुमको वही भेजा है, किम लगाकर कह रहे हैं कि तुम स्वयं आगता और विधिना प्रेषिता आसी, नहीं नहीं नहीं, विधिना प्रेषिता आसी, तुम स्वयं आई हो घूमते फिरते कि तुमको परमेश्वर ने भेजा है, तो फिर अंत में यही निश्चय करते हैं, नहीं नूनम प्रेषिता है वैत्यर्थ, भगवान ने ही भेजा है तुमको, नहीं स्पेशल उनकी दया है तब तुमको भेजा है, तो तुम्हारा अभिप्राय हम पूछे यहां आने का, छोड़ो ये बताने की क्या जरूरत है, हमारा अभिप्राय सुनो और हमारे अभिप्राय को पूरा करके हमें धन्य कर दो। हमारा क्या अभिप्राय है, अगर मान लीजिए वो लड़की पूछे मोहिनी कि आप लोग क्यों यहां आए हैं, ये पूछ रहे हैं कि यहां क्यों आई हो, तो वो पूछ सकते हैं ना कि आप लोग क्यों जुटे हैं। इसलिए उसको अनुकूल बनाने के लिए अपनी अनुकूलता व्यक्त कर रहे हैं। सातुम न स्पर्धमानानाम एक वस्तु निमानिनी ज्ञातीनाम बद्ध वैराणाम संविधत्स सुमध्य में। हे सुमध्य में, हे मानिनी, अभी से प्रत्येक आदमी मान चुका है कि हमारी पत्नी बनेगी, क्योंकि मोहिनी सब पर ऐसे देख रही थी, ऐसा लगता था कि ये अपने हृदय के भाव को, प्रेम को प्रकट कर रही है। भगवान जब इस प्रकार से कोई भाव व्यक्त करेंगे तो कौन व्यक्ति नहीं बच पाएगा। जिसके प्रति देख रहे थे उसको इस तरह से देख रहे थे कि बस बस इसी को चुन लिए, और भगवान तो सर्वसमर्थ है, वो सब पर देखते थे। दूसरा ये देखता था कि हमको देख रही है, और सभी यही देख रहे थे कि हमको देख रही है, और देख करके मुस्कुरा रही थी और भौहें संचालन कर रही थी, इस तरह से मुस्कुरा रही थी, इस तरह से देख रही थी कि ये माननी संबोधन कर रहे हैं। हे माननी, माननी का अर्थ ये है, वो हमारे हृदय को कहे नहीं, लेकिन माननी कह करके ये कहते हैं, यही इच्छा है कब तुम मुझसे रूठोगी और मैं तुम्हारे चरणों पर गिर कर मनाऊंगा, इस प्रकार की बात बोल रहे। हे माननी और हे सुमध्य में, ये सुंदर मध्य प्रदेश वाले, सुंदर कटी वाले, हम लोग यहां पर जुटे हैं। हम बता देना चाहते हैं आपसे कि क्यों जुटे हैं हम यहां पर जुटे हैं, और अभी तत्काल की बात बता रहे हैं, एक वस्तु के लिए, इस अमृत कलश के लिए, अमृत के लिए स्पर्धमान आना, हमारे भीतर स्पर्धा है, होड़ है कि हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, और हम लोग ज्ञाती हैं, एक ही परिवार के हैं, बद्ध बैराणाम, लेकिन हम लोगों में इस अमृत के चलते बैर उत्पन्न हो गया है, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो हे माननी, हे सुमध्य में, संविधत्स्व, हम लोगों में शांति स्थापित कर दो, कॉम्प्रोमाइज करा दो। इसलिए बोल रहा है कि मोहिनी सोची कि तो बहुत अच्छे लोग हैं, झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, और ये कितने दुष्ट हैं, झगड़ा किसे कर रहे हैं, भगवान के हाथ से अमृत कलश छीन करके और एक स्त्री को पंच बना रहे हैं, रास्ता चलने वाली स्त्री, तुम पंचायत कर दो, हमारे भीतर शांति स्थापित कर दो। तो मोहिनी तुरंत बोली, अब लोग ज्ञाती हैं, गुतिया परिवार हैं, तो किस परिवार के हैं, ज्ञाते हैं तो किस परिवार के हैं, और आप लोगों में झगड़ा क्यों है, तो अपने आप बताने लगे। उसको अनुकूल बनाने के लिए बोले, वयम कश्यप दायादा, हम कश्यप जी के दायाद हैं, संतान है, पुत्र है। तो बाद में मोहिनी को पता चलेगा कि देवता भी मथे हैं, तो दैत्यों के प्रति दोष दृष्टि कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग पहले ही खोल दे रहे हैं कि हमारे प्रति ये बहुत सद्भाव रखेगी, हमको सज्जन समझेगी, तो इसीलिए कह रहे हैं, वयम कश्यप दायादा, हम लोग कश्यप जी के संतान हैं, दयाद हैं, और भ्रातर, हम आपस में भाई हैं, देवताओं को भी कह रहे हैं, हम आपस में भाई हैं, कश्यप जी के संतान है, कृत पौरुषा, हम लोग यहां पर पौरुष किए, पुरुषार्थ किए, थोड़े में बताया कि हम लोग यहां मंथन किए समुद्र का, और इसके बाद समुद्र से अमृत उत्पन्न हुआ है, तो उसी अमृत के लिए कोई कह रहा है कि हम आगे पिएंगे, हम आगे पिएंगे, नहीं, ये सब आप फैसला कर दीजिए, विभजस्व यथा न्यायम, न्याय के अनुसार जैसा जिसको उचित हो वैसा आप बांट दीजिए, इस अमृत को आप बांट दीजिए। भगवान नहीं बांटते क्या? भगवान धन्वंतरी बांट सकते थे ना, अगर ये लाइन में बैठते शांति से, तो सबको देते, लेकिन इन्होंने अब न्याय कर रहे, जथा न्याय क्या था, न्याय यह था कि इन लुटेरों को एक बूंद न दिया जाए, यही न्याय था। देखिए भगवान कभी अनुचित नहीं करते। इन्होंने कहा कि जथा न्यायम विभजस्व, जथा न्याय बांटो, न्याय यही है ना, न्याय उसी को कहते हैं कि मान लीजिए कोई किसी को 10 रुपया दिया है तो उसको समय पर 10 रुपया देना संकट में न्याय है। तो जो इस तरह से छीना झपटी कर रहे हैं, अमृत लेकर के भागे हैं, उनको देना क्या न्याय था? नहीं, यह अन्याय था। न्याय यह था कि उनको न दिया जाए, न्याय यह था कि देवताओं को दिया जाए। इनके मुख से निकल रहा है जथा न्यायम विभजस्व, जथा न्याय बांटो, नैव भेदो जथा भवे, जिसे भेद न हो। हाँ, भेद न हो और तुम जितना भेद करना हो करो, ये भेद कर चुके, तो भेद नहीं होना चाहिए, मतलब कलह नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसको आप बांट दीजिए। इतना प्रेम से बोल रहे हैं मोहिनी से, आप बांट दीजिए, इसको बांट दीजिए। इसी तरह से जज बना लिए, रास्ता चलने वाली स्त्री से अब पंचायत करा रहे हैं कि आप सब फैसला कर दीजिए, बांट दीजिए। वो क्या जानते हैं कि किसको क्या देना है, कौन कितना मेहनत किया है, ये कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है, उसको क्या पता है स्त्री को। लेकिन इसे इनको मतलब नहीं था, मतलब यह था कि हमारे अनुकूल हो जाए, हमको पसंद करे, बस इसीलिए ये ऐसी बात बोल रहे हैं। ऐसी बात बोलेंगे सुंदर बात तो ये हमको पहले पसंद करेंगे कि वाह वाह, बहुत उच्च विचार के हैं ये, कि देवताओं को भी देना चाहते हैं, भेदभाव नहीं करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। ऐसे न्याय प्रिय जो पहले लूट करके भागे थे कलश को, अब न्याय की बात कह रहे हैं। पर जो भी हो, इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि यह हमारे अनुकूल हो जाए, हमको अपने पति के रूप में वरण करे। और मोहिनी से यहां तक कह दिए कि इस स्थान पर जब तुम आई हो तो हम समझ रहे हैं कि तुम विवाह के लिए आई हो। और ये भी कहे, मैं एक श्लोक छोड़ दिया, कि हम ऐसा मानते हैं कि तुम्हारा आज तक किसी पुरुष ने स्पर्श नहीं किया है, अनाघ्रात पुरुष हो, किसी पुरुष ने तुम्हारा स्पर्श नहीं किया है, मतलब तुम अविवाहिता हो और थोड़ी सभ्यता दिखा रहे। हम इसी से बात कर रहे हैं, अगर ये जान जाते कि तुम किसी दूसरे की पत्नी हो चुकी हो तो सेव सेव, कभी ऐसा हम बात नहीं करते, कभी इस तरह की हरकत नहीं करते। लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम विवाहिता नहीं हो, कुमारी हो और विवाह के लिए ही यहां आई हो, हम अनुमान करते हैं। तो सब तरह से उसको अनुकूल बनाना चाहते, तो कहते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि दैत्यों में या सिद्ध चारण गंधर्वों में, देवताओं में या लोकपालों में किसी ने तुम्हारा कहीं स्पर्श नहीं किया है, कुतो निर्भी, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या, मनुष्य ने कोई तुम्हारा स्पर्श नहीं किया है इसमें तो कहना ही क्या, किसी देवता ने भी, असुर ने भी, सिद्ध चारण गंधर्व ने भी तुम्हारा स्पर्श नहीं किया, तो सत्य ही बोल रहे हैं। वास्तव में भगवान को खून जानेगा तो सबके लिए अगम्य है, अचिंत्य है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं तुमसे, तो यही हमारा कार्य है, इसको आप कर दीजिए। और ये अमृत का कलश है, इसको लेकर के बांट इत्युपा मंत्रितो दैत्य माया जोशी बपुर हरि प्रहस्य रुचिरा पांगर निरीक्षण इदम अब्रवीत। इस प्रकार से जब असुरों ने प्रार्थना किया मोहिनी भगवान से अमृत बांटने के लिए, तो अपनी योग माया के द्वारा स्त्री रूप प्रकट करने वाले भगवान हरि श्री कृष्ण प्रहस्य हंसे, हंस रहे थे, बार बार हंस करके अत्यंत मनोहर तिरछी नजर से देख करके देखते हुए इदम अब्रवीत यह बोले, मुस्कुरा करके भगवान बोल रहे हैं। और भौहें मटका करके स्पेशल देख करके बोल रहे हैं। उस तिरछी चितवन को श्रील सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं और रुचिर अपांग निरीक्षण, रुचिर अपांग है निरीक्षण, अत्यंत सुंदर चितवन से दृष्टि से देख करके और कहते हैं, थोड़ा प्रतिकार किए कि मैं कैसे बांट सकती हूं। उनके चित्त को और खींचने के लिए कह रहे हैं, कथम कश्य, श्री भगवान वाच, कथम कश्यप दायाद पुश्चल्या मई संगत, मैं पुश्चली हूं। श्री भगवान अपने को पुंश्चली कह रहे हैं, पुंश्चली पुंसी पुंसी चलती इति पुंश्चली, एक पुरुष के बाद दूसरे पुरुष, दूसरे के तीसरे चौथे, इस तरह कई पुरुषों के साथ संबंध रखे उसको पुंश्चली कहते हैं। तो मैं पुंश्चली हूं और आप लोग कश्यप जैसे ऋषि की संतान हैं, तो इतने बड़े सत्पुरुष की संतान होकर के भी, पुत्र होकर भी, आप लोगों में इतनी वासना कैसे हो गई? मोहिनी के पूछने का ये आशय था, संतान ऋषि की है, ऋषि की संतान तो शुद्ध होगा ना, उसके भीतर इस तरह के काम विकार आदि संभव नहीं होगा। संतान ऋषि की हैं, कश्यप जी के दयाद हैं, और वो इस तरह से नहीं बोली लेकिन भाव यही है कि आप में इतनी वासना कैसे हो गई, और इसी वासना के वश में होकर के मुझ पुंश्चली पर आप इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं? संगतः विश्वास कर रहे था, संगतः कहते कि हमसे मोहब्बत कैसे कर रहे हैं? ऋषि की, कश्यप जी की संतान होकर, कश्यप जी के पुत्र होकर के, और ये विश्वास से क्यों संबंध कर रहे हैं? हम पर कैसे विश्वास किए? एक मोहिनी अजय प्रश्न की है, इसको छल करना है लेकिन साफ कह करके कर रहे हैं, और ये लोग समझ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। कथम कश्यप दायाद पूछ चल लिया मई संगता, कश्यप जी के संतान होकर के आप लोग मुझ पुंश्चली पर कैसे विश्वास कर रहे हैं? विश्वासो पंडितो जातु काम निशु न जाती ही। कोई पंडित आदमी, कोई पंडित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, शास्त्रों का ज्ञाता, कभी कामनी स्त्रियों पर विश्वास नहीं कर सकता है, जातु कदाचित अपनी किसी भी स्थिति में विश्वास नहीं कर सकता है। कामनी स्त्री की बात कर रहे हैं, कामनी ही कहते हैं उसको जो काम वासना के फेर में पड़ी है और उसको पति आदि से कोई मतलब नहीं, तो ऐसी कामनियों पर पंडित व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करते। साफ मोहिनी कह रहे कि आप लोग हम पर विश्वास मत कीजिए, मैं धोखा दे सकती हूं। नीति शास्त्र बता रही है कि पंडित जो होता है वो जातु का अर्थ कदाचित अपि कामनिषु विश्वासम न याति न प्राप्नोति, कभी विश्वास नहीं कर सकती। जातु का अर्थ किसी भी स्थिति में, चाहे वो कामनी स्त्री लाख बार शपथ खाए कुछ भी करे, लेकिन विद्वान व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास कौन करेगा? बोका करेगा, बुद्धू जो है वो विश्वास करता है, बुद्धिमान आदमी पंडित व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। तो आप लोग कश्यप जी के दयाद होकर कैसे विश्वास कर रहे हैं? फिर बाद में जब धोखा होगा तो हम आप लोग पछताएंगे, ये कहने का मोहिनी का भाव था। कपट करने के लिए ही भगवान स्त्री का रूप बनाए हैं, तो साफ साफ बोल रहे हैं कि बाद में कोई भगवान को दोष न दे कि भगवान ऐसा कपट कर, नहीं कपट किया, साफ कहे ना। तो वे कहे कि हाँ ठीक है, तो पुष्चली के प्रति ऐसा विचार पंडित कर सकता है या कामनी के प्रति, लेकिन आप तो परम शुद्ध हैं, परम शुद्ध हैं। इस संसार में तो स्त्री जाति का स्वभाव ऐसा होता है, असुर लोग कह रहे हैं, ऐसा स्वभाव होता है कि एक वेश्या भी अपने को सती जैसा व्यक्त करती है, अच्छा व्यक्त करेगी कि मैं सुशीला हूं, अच्छे स्वभाव का हूं। लेकिन ये स्त्री अद्भुत है, सर्व स्त्री विलक्षण है कि परम शुद्ध होते भी हुए भी अपने को पुष्चली कह रही, आपस में एक दूसरे पर देखकर आश्चर्यचकित हो रहे, ऐसा स्वभाव तो हम कहीं सुने नहीं, देखे नहीं। ये आबाल अनाघ्रात पुरुष है, बचपन से इसने कभी पुरुष का गंध भी नहीं देखा, किसी पुरुष के साथ संपर्क नहीं है। अरे तुम्हारा शरीर बता रहा है, तुम्हारा तेज बता रहा है, तुम बिल्कुल शुद्ध हो, वो तो ठीक ही बोल रहे हैं, तो भगवान है, और तुम अपने को इस तरह अशुद्ध कह रही हो। अद्भुत स्वभाव है भाई, अद्भुत भगवान ने भेंट कराया स्त्री से कि अशुद्ध स्त्रियां अपने को शुद्ध कहती है संसार में, और यह परम शुद्ध होकर के भी अपने को अशुद्ध कह रही है। समझ गए, समझ, मतलब तुम हमारी परीक्षा ले रही हो कि हम कितने निष्कपट हैं और हम तुम पर विश्वास करते हैं, ये परीक्षा ले रहे हैं। हम समझ गए, समझ गए। वो बाद में कहेंगे, तो ये मोहिनी जी बोल रही हैं। देखिए, हे सूरत दिशा, हे देवताओं से द्वेष करने वाले, भगवान तो भीतर से रंज हैं, हमारे भक्तों से तुम लोग द्वेष करते हो, ये भाव है। सूरत दिन से संबोधन कर रहे हैं, शाला दृकाराम स्त्री नाम च स्वयरिणी नाम सूरत दिश सख्या नाहूर अनित्यादि नूतनम नूतनम विचिन्नता। बानर और कुकुर बहुवचन है, बानरों का और कुकुरों का, कुत्तों का फ्रेंडशिप नित्य नहीं रहता है, अस्थिर नहीं रहता है, वो रोज रोज फ्रेंड बदलते ही रहते हैं। इसी तरह से स्वैरिणी स्त्री, स्वैरिणी स्त्रियां जो होती हैं उनके भी फ्रेंड बदलते ही रहते हैं, नया नया नूतनम नूतनम विचिन्नता, वो खोजती ही रहती है नया 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 नया, नया। नूतनम नूतनम विचिन्नता। दैत्य लोग कह रहे हैं ऐसी बात मत बोलिए, आप इतनी शुद्ध होकर के इस तरह की बात मत बोलिए कि आप स्वैरिणी हैं, पुष्चली नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए भले मैं कितना भी शुद्ध हो लेकिन न बाप संग में है न भाई संग में है, मैं स्वतंत्र घूम रही हूं, तो आखिर आप क्या सोचेंगे? इस तरह से स्वच्छंद घूमने वाली स्त्री क्या शुद्ध रह सकती है? ये करे आप कुछ भी कहें, हम लोग भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हम समझते हैं कि कौन स्त्री कैसी है, आप हम पर विश्वास नहीं कर रही हैं या हमारे सत्य वचन की, हमारे धैर्य की परीक्षा लेना चाहती हैं, तो ये रहा अमृत। हम वचन देते हैं पूरी सभा में, सब लोग तुम लोग तैयार हो ना, ये अमृत का कलश लीजिए, इसको आप जिसको जितना देने का मन कर दीजिए, जैसे देना हो दीजिए, या इसको फेंक दीजिए या स्वयं पी लीजिए, जो इच्छा हो कीजिए, हम तो आपके सद्गुण से ही आपके कृत दास हैं, बस आपके चरणों के सेवक हैं, हमको ये अमृत अमृत कुछ नहीं चाहिए, बस आप हम पर विश्वास कीजिए कि हम आपके हैं, हम आपके चरणों के दास हैं, बस हमको यही सूझ रहा है। बहुत इस तरह से असुर लोग बोलते हैं। ये हमारे सामने आप ये मत बोलिए कि मैं पुंसली हूं, ये हूं, वो हम सुनना नहीं चाहते। ठीक है स्त्रियां धोखेबाज होती हैं, धोखा देती होंगी, लेकिन आप धोखा देंगी ये हम नहीं सुनना चाहते। हम ऐसा नहीं सुना चाहते, पाप लगेगा हमको सुनकर। इतना रिझ गए मोहिनी जी पर, और वही वो कहलवाना चाहती थी सब। उदाहरण दे रहे साला ब्रकारम स्त्री नाम च स्वयरिंग नाम सूरत दिशा सख्या नाहू रमित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वता। बानरों की मित्रता बानरियों के साथ अस्थिर नहीं होती है। आज इस बानरी के साथ है कसुन, कल उस बानरी के साथ है, और कुत्ते कुत्तियों के साथ उनकी मित्रता स्थायी नहीं होती है। नूतनम नूतनम विचिन्वता नए नए ढूंढते हैं। इसी तरह से स्वैरिणी, स्वैरिणी का अर्थ है स्वच्छंद, अपनी इच्छा से घूमने वाली स्त्री जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। उसके नए नए फ्रेंड बदलते रहते हैं, नूतनम नूतनम विचिन्वता। और सख्य शब्द कह रहे मुनि, एक स्त्री ही बोल रही है स्त्रियों के स्वभाव। तो विश्वास मत कीजिए हम पर, उसके कहने का आशय था कि आप लोग कश्यप जी के पुत्र हैं और मैं एक रास्ता चलने वाली स्वतंत्र स्त्री हूं, किसी भाई या बाप आदि के कंट्रोल में नहीं हूं। तो वास्तव में भगवान तो किसी के कंट्रोल में है नहीं, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, परंतु वो स्त्री के बातों को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए मुझ पर विश्वास मत कीजिए। और कोई ये काम आप लोग दूसरे से करा लीजिए, हमको बांटने के लिए मत कहिए। लेकिन वे आपस में मंत्रणा करके समझ नहीं रहे हो, इति ते छेलितम तस्या आश्वस्त मनसो सुरा जहसुर भाव गंभीरम ददुश्चामृत भाजनम। जब दैत्यों ने सुना मोहिनी की बात को तो वे आपस में एक दूसरे को देख करके हंसने लगे। समझ रहे हो बात कहां भाग रही है, मतलब परम शुद्ध स्त्री है, परम शुद्ध है, और ये कह रही है कि मैं धोखेबाज हूं, मैं वेश्या हूं, मैं ये हूं वो हूं। तो आप सब समझ रहे, तो सब का हां हां आप सब समझ रहे। जहस वे हंसे भाव गंभीर, हमें क्रिया विशेषण है, इसमें गंभीर भाव था। वो लोग वही बुझते थे, दूसरा नहीं बुझ रहा था। वो लोग हम समझ रहे हैं ना कि कैसी स्त्री है, कैसी स्त्री है, जिन देवताओं से द्रोह करते हो उन देवताओं के प्रभु हैं, यही स्त्री है। एक बूंद अमृत देने वाली नहीं है, और साफ बोल रही है स्त्रियां धोखेबाज होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। तो मतलब आप लोगों के साथ हमारी जो मैत्री है ये 10 मिनट के लिए, हो सकता है बदल जाए, मैं देवताओं के पास भी चली जाऊंगी, ऐसा भी संभव है। आपसे कह रही हूं, आप कह रहे अमृत बांटने के लिए, और बांटने में हो सकता है मैं देवताओं को दे दूं, क्योंकि आखिर जब प्रेम करना है तो कोई आप ही प्रेम के पात्र तो है नहीं। हम बदल सकती हैं, बदल सकती हैं, और स्त्रियां खास करके वो भगवान कह रहे हैं। इस पर वो आपस में हंस रहे थे, जहसु हंसे भाव गंभीरम जहसु, गंभीर भाव समझ रहे थे। ये इतने बुद्धू थे, कुछ नहीं समझे, लेकिन आप अपने से एक दूसरे पर संकेत कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कहां बात जा रही है। कहां जा रही है तो बाद में पता चलेगा। इसी तरह से मनुष्य समाज में लोग धोखा खाते हैं, कभी कभी बिल्कुल विपरीत घटना होने वाली होती है, लेकिन ऐसे अनुकूल मानते हैं कि हमको ये तो बहुत लाभ है, ये है वो है वो है, हम समझते हैं ना। तो हंसे और ददुश्च अमृत भाजनम, और अमृत का बर्तन अभी बात हो ही रही थी तब तक छीन करके दे दिए। जो बर्तन लिया था अमृत का, तो उसे कहते हैं अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि दो अब भी समझ में नहीं आ रहा है, इतनी साफ बात बोल रही है ये, तो इसलिए कि वो अमृत मोहिनी सुन ले कि ये व्यक्ति हमको अमृत दिया, विवाह तो सबसे पहले हमसे करे, ये इस भाव से समझना चाहिए ना। ददुश्च अमृत भाजनम, फिर बर्तन भगवान के हाथ में आ गया। देखिए अन्यत्रम नैपुण्यम चलती न भगवती, भगवान पर किसी की बुद्धि काम नहीं करती है, दूसरी जगह बुद्धि काम करेगी। अमृत का कलश पुनः भगवान के हाथ में आ गया, वो दे ही दिए, भगवान मांगे नहीं, लोग गिनाई कर रहे थे कि नहीं नहीं हमें बांटने नहीं आएगा, हमारा इसमें कोई अनुभव नहीं है, मैं अभिज्ञ हूं, हमसे गलती होगी, ये होगी वो होगी, हमको मत दीजिए, नहीं नहीं बस जबरदस्ती। कर्माणेवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचित्, जो भगवान कर्म फल दाता है, जिन्होंने अमृत उत्पन्न किया था, अंततः घूम फिर करके अपने आप अमृत कलश उनके हाथ में आ गया। भगवान ऐसी बात बोले कि लोग जबरदस्ती दे दिए। ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम हरिः बभाषईषत् स्मितशोभया गिरा जदभ्युपेतम क्वच साधु साधुवा कृतम मया वो विवजे सुधामिमाम। ततः अमृत भाजनम गृहीत्वा, जब अमृत का बर्तन भगवान के हस्त कमल में मिल गया, वो तो देवताओं के लिए माँ है ना, जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो ऐसे भगवान अपने भक्तों को देवताओं को अमृत पिलाएंगे, तो अमृत का कलश ले लिए। वो पहले भी चाहते तो उनको मार कर ही ले सकते थे, ऐसी बात नहीं कि भगवान भीख मांगे या कुछ की, लेकिन ऐसे ट्रिक से बोले कि वो लोग दे दिए, और जब ले लिए अमृत कलश अपने हाथ में, तब फिर बोल रहे हैं ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम हरि बभास ईषत मित शोभया गिरा, बोल रहे थे अमृत कलश लेकर के, और हंसते हुए बहुत सुंदर हंसी से उनको मोहित करते हुए बोले, यदि मया साधु असाधु वा कृतम, यदि हमसे कोई गलती हो जाए, अच्छा हो, किसी को मैं नहीं दे पाऊं, किसी को ज्यादा दे दूं, किसी को बिल्कुल न दे पाऊं, या कहीं हमारे हाथ से गिर जाए अमृत, मैं अभी तक कोई सर्विस की नहीं हूं, असल में विवाह नहीं हुआ तो अब तक मैं किसी के लिए भोजन बनाई नहीं, परसी नहीं, किचन में काम नहीं की हूं, और अगर किसी के पास विवाह हुआ होता तो अनुभव होता कि पति की सेवा ऐसे की जाती, हमको कोई अनुभव नहीं है, तो हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को दे दूं या गिर जाए, पैर ठोकर लग जाए, छलक जाए, आपको न मिले, तो कोई भी हमसे कोई गलती हो जाए, कोई भी, तो यदि अभ्युपेत, यदि आपको स्वीकृत है, यदि आप हम इस हमारी गलती को स्वीकार करते, भाई गलती हो सकती है, ठीक है बांटो, तब तो मैं बांटूंगी, अन्यथा हमको इसे कोई प्रयोजन नहीं है, आप अभी भी अपना अमृत रखिए, हमसे गलती होगी क्योंकि मैं अनभिज्ञ हूं, कोई स्त्री अगर रोज भोजन परसी होती है अपने पुत्रों को या पति को तो अनुभव होता है, हमको कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया तो हमको परोसती है, भगवान के कहने का आशय ये था कि मैं किसी को परसा नहीं हूं, परसी नहीं हूं, सब भक्त हमको भोग लगाते हैं, हमको खिलाते हैं, तो हमारा अनुभव नहीं है, ऐसे बोली नहीं मोहिनी तो हमसे कोई भी साधु असाधु माने अच्छा या ठीक, कोई जो विधि है उसके अनुसार मैं सर्विस करूं, परसूं या न परोस पाऊं, यदि हमारी गलती या सही सब आपको स्वीकार है, कोई बीच में हमको डांटेगा नहीं ना, हमसे कोई गलती होगी तो कोई हमको बोले ना कि तुम क्या कर रही हो, तो कोई बीच में नहीं डांटेगा ना, तो लेकर नहीं नहीं कौन डांटेगा, कौन डांटेगा, कोई नहीं डांटेगा, डांटेगा तो मैं हूं ना तो तुम हमारी पत्नी बनोगी तो दूसरे को मैं मार दूंगा कोई नहीं डांटेगा, तुम्हारी गलती सही सब बात स्वीकार है, बस बांटो। तो जो ऐसा कहा कि मैं सब स्वीकार है, तो वो सोचता था कि हमारे हमको तो अमृत देगी ही, और अमृत के बाद जो महा अमृत अपना सौंदर्य हमारी पत्नी बन करके रहेगी, तो ये तो अलग लाभ है, असली लाभ, और अमृत तो देगी ही, क्योंकि मैं अनुकूल बोल रहा हूं। तो जब उसने कहा कि सब स्वीकार है ना, तो ये लोग आपस में पूछे, बोलो स्वीकार है, हाँ हाँ एकदम, एक का भी प्रतिवाद नहीं हुआ, हाँ स्वीकार है स्वीकार है स्वीकार है। तो ये तो कह रही है कि कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, किसी को मिले न मिले, तो ये सब स्वीकार है, हाँ बिल्कुल स्वीकार है, स्वीकार है बिल्कुल, हमारे इष्ट देव की शपथ है, बाप की शपथ है, माई की शपथ है, कोई गलती होगी हम चेत तक नहीं बोलेंगे, अब तुम बांटो बांटो बांटो। इस तरह से भगवान अपने हाथ में अमृत कलश ले लिए। इत्यभी व्याहृतम तस्या आकलन सुरपुंगवः अप्रमाण विदस्तस्या तथेत्यत्यव अनुमंसत। जब भगवान ने इस तरह शर्त करा लिया और अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया, लेकर के अमृत कलश लेकर के शर्त कराई, इसको सुन करके जितने भी असुर पुंगव थे, असुर श्रेष्ठ बड़े बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उनकी भी बुद्धि मारी गई, वे भगवान के आशय को बिल्कुल नहीं समझ पाए, बिल्कुल नहीं समझ पाए कि क्या कह रही, क्यों स्वीकार करा रही है कि गलती सही सब समझ पाए, क्षमा करें, क्योंकि अप्रमाण विदह तस्य, उस मोहिनी के प्रमाण को, यत्ता को, ऐश्वर्य को ये लोग नहीं जानते थे, और सबने कहा तथा इति अनुमंसत, सबने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तैयार हो, तो अमृत उत्पन्न हो गया और भगवान के हाथ में आ गया। अब कल वितरण किया जाएगा, भगवान श्री मोहिनी बांटेंगे, भक्तों के लिए तो भगवान माँ हैं, बड़े स्नेह से, देवता लोग लाइन में लगे और माँ पिला रही थी, दैत्यों को इस तरह से मोहित करके, भगवान की यह लीला परम उदार लीला, देखने में लगता है कि भगवान धोखा दिए, लेकिन धोखा नहीं दिए, बिल्कुल सत्य जो काम करना चाहिए, उन्होंने कहा कि जथा न्याय बांटिए, तो भगवान ने न्याय से ही बांट। अब ऐसे कथा के सातवें दिन अमृत बांटा जाएगा जो समुद्र से निकला, लेकिन मोहिनी जी का चरित्र, भगवान का चरित्र, अजित भगवान का, ये तो सातों दिन से बांटा ही जा रहा है, असली अमृत भागवतामृत है, असली अमृत कथामृत है, ये तो हम लोग पी रहे हैं, इसलिए हम लोगों का परम धन्य भाग है, भगवान हमारे वाणी में, हमारे हृदय में, कान में, सब जगह उतरते हैं, उनकी लीलाएं, यही अमृत है वास्तव में, सो अमृत तत्व आए कल तक। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।